भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और ज्ञानेश्वर महाराज सबको और मैं तुमको हमने इस प्रकार है सुभद्रा पति, सुभद्रा के पति थे अर्जुन, इसलिए ये भाव मानो मेरी विभूतियां ही हैं और इन्होंने समस्त विश्व व्याप्त कर रखा है, इसलिए ब्रह्मा से लेकर पिपली का मतलब चींटी पर्यंत इस पूरी सृष्टि में मेरे अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं। मतलब चींटी से लगा करके ब्रह्मा तक ओतप्रोत रूप से मैं ही हूं, मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं। जिस व्यक्ति को इस तथ्य का ज्ञान हो जाता है कि एक परमात्मा ही सारे जगत में ओतप्रोत रूप से व्यापक है, उसमें ज्ञान की जागृति हो जाती है। जिसको ये निश्चय हो गया कि भगवान सर्वव्यापक है और उससे बिन कुछ भी नहीं है तो उसका भय निवृत्त हो जाएगा। पर आप तो सोचे मैं मर जाऊंगा, मेरे यहाँ हो जाएगा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो और इस छोटे बड़े और भले बुरे इत्यादि भेदभाव की कल्पनाओं के दुख स्वप्न नहीं आते हैं उसको। जिसको ज्ञान हो जाता है उसको भले बुरे विचार नहीं आते, आई समझो। ये वही मेरी विभूति है और सब मनुष्य मेरी उस विभूति से ही व्याप्त है। ये सारा जगत मेरी ही विभूतियाँ। अगर कोई रूपवान है, श्रद्धावान है, दयावान है, धनवान है, सब वो मेरी विभूतियाँ, मेरे द्वारा ही है। अतएव आत्मयोग के अनुभव से इन सबको एक ही आत्मस्वरूप मानना सर्वथा ठीक और परम आवश्यक है। इस विषय में संदेह करने के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है कि जो अपने मनोबल के संयोग से इस आत्मयोग के द्वारा मेरे साथ मिलकर समरस हो जाता है, एक रस हो जाता है, वो अत्यंत शुद्ध बुद्ध होता है। मनुष्य जन्म लेकर के जो भगवान से एकता प्राप्त कर लेता है, एकत्व प्राप्त कर लेता है, बस वही कृपा पा जाता है। नहीं तो सब तो बेड किनारे रोते ही हैं, क्यों? दुख का कारण है कि भगवान से तुम अपने आप को अलग मानते हो। दुख का कारण है कि तुम अपने आप को भगवान से अलग मानते हो, इसलिए सब गलत काम होते हैं। हे अर्जुन, जो इस प्रकार अभेद दृष्टि से मुझे भजता है कि ये मेरा भगवान है, मेरा राम है, मेरा जो भी है परमात्मा, वो ओतप्रोत रूप से सब जगह है, तो न किसी से द्वेष करता है, न किसी से वैर करता है, सब भगवान की विभूति। कोई कुरूप है तो उसको देख के हंसता नहीं, गरीब को देख के घृणा करता नहीं, रोगी को देख के घृणा करता नहीं, तो उसके भजन के दिल्ली में पहुंच करके मेरा रहना नितांत आवश्यक हो जाता है। जिसका ऐसा निश्चय होता है तो उसके दिल्ली में रहता हूँ, मैं मकान की हाजिरी रहता हूँ उसके। इसलिए मैंने जो अभेदात्मक भक्ति योग बतलाया है भगवान का, मैं मेरे भगवान, तो भगवान के हिसाब है तो किससे देश करूं, ऐसी अभेदात्मक भक्ति योग बतलाया है, उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं हो सकती। और शंका हो जाए कि भगवान है भी कि नहीं, तो इसको क्या कहते हैं, नास्तिक। अब भौतिक स्तर पर अपना कोई काम नहीं हो रहा है संसारिक, तो गुरु को और भगवान को गाली ठोकना शुरू कर देते, चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे गुरु हो, और अनुकूल हो गया तो कहे है मार भाग। तो भक्ति योग बतला है ना, भक्ति ये होती है कि कैसी भी विषम परिस्थिति में विश्वास नहीं टूटना चाहिए। जरूर कुछ मंगल है अपना, अच्छा होगा, किसी की बदली हो गई और अपनी बदली कैंसिल नहीं हुई तो भगवान को कहते भोगने लगाऊं तारे, मत लगा, भगवान कोई मकता है क्या, मगर फिर भी कहकर बैठे रहे। ये भक्ति मार्ग वाले ऐसे होते हैं। अच्छा बताओ, 10 जनों ने बोला कि मेरा लड़का सीए बन जाए या पीए बन जाए और वो फेल हो गया तो हनुमान जी के सवमणि करता है क्या, बोली भी करता है क्या, पास ही नहीं गया तो भूकुमर, तो भगवान को रिश्वत दे देते, तो ये सब अज्ञानता के कारण होता है, और उसमें दुर्बलता के लिए कोई भी जगह नहीं होती। जिस प्रकार ये भक्ति योग चलता रहे, यदि उसी समय शरीर छूट जाए तो कुछ हानि नहीं होती। भगवान बोलता जो मेरे में दृढ़ निश्चय रखता है, अच्छा भला बुरा क्या जीव जाने ना, इसको भगवान के समर्पण रहता है, कभी दोषारोपण नहीं करता है। और उस समय उसका शरीर भी छूट जाए तो भगवान को नियंत्रण में रहता है और अच्छी जगह पर उसका वापस जन्म होता है। सदा उसके जो पीछे का अभ्यास किया हुआ उसके साथ जाता। बात छठे अध्याय में स्पष्ट रूप से पिछले बतलाई जा चुकी है। अब यदि तुम्हारे मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस अभेद का स्वरूप क्या है, तो सुनो मैं तुम्हें उसका स्वरूप साफ साफ बतला देता हूं। हे पांडव, इस समस्त जगत का मूल मैं ही हूं, आधार मैं ही हूं, और मुझसे ही सबका जन्म और स्थिति दोनों होते हैं। तरंगे जल में उत्पन्न होती है और उनका आश्रय तथा जीवन भी जल ही होता है। जैसे बिना जल के तरंगे हो ही नहीं सकती, वैसे ही इस विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती है जो मेरे बिना हो और जिसमें मेरा निवास न हो। भगवान चैलेंज कर रहे हैं जिन लोगों को मेरे इस विश्वव्यापक स्वरूप का ज्ञान है कि भगवान के बिना कुछ नहीं, भगवान ही ओतप्रोत रूप से है। मगर ओतप्रोत रूप से है तो फिर गलत गलत काम क्यों करते हैं एकांत में? वो देख रहा नहीं है क्या? बोले उस समय तो उसकी आंखें फूटी होती है, नींद आई हुई होती है। नहीं, ये एक थिंकिंग हो जाती। जिसको ये मालूम है भगवान सर्वव्यापक है, वो गलती करेगा ही, पाप ही नहीं होगा। वे चाहे जिस स्थान पर रह के मेरा भजन करे, पर वे वास्तव में उदित होने वाले प्रेम भाव से ही भजन करते हैं। आपको सोचे साहब वो मेरा छुटकारा हो जाए, थोड़ा सा पेंशन हो जाए, थोड़ा सा निवृत्त हो जाऊं, बाल बच्चों को धंधा संभला दूं, फिर भजन करूंगा, तो ये कभी भी नहीं होगा। जो गुरु में दोष देखने लग गया तो गुरु शक्ति उसके पास रहेगी? जो गुरु के वचन में हेरा फेरी करेगा उसकी शक्ति रहेगी, लौट के आ जाएगी कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो कुछ तो, ये गलत बात है। जो गुरु को दुष्ट समझ रहा है, चोटा समझ रहा है, पक्षपाती समझ रहा है, तो उनके दीक्षा रहेगी, लौट के आ जाएगी? आई समझ? ये तुम भी एक अपराध करो, देखो एक बार सावधान करेंगे, दो बार करेंगे, मैं नहीं करूंगा, गुरु शक्ति करेगी, पर तीसरी बार में तो दीक्षा लौट के आ जाएगी। फिर भले बैठ किनारे रोते रहो, आई समझ? फिर तो बोले फोटो तो लगी हुई है, हमारा घर है, दिया बत्ती रोज करा मैं, वो जो फोटो वाला उसको दिखता नहीं होगा इसलिए दिया बत्ती करते हो क्या? अगरबत्ती करा हमें कि उसके नाक में कीड़े पड़े हुए होंगे इसलिए तुम सुगंधित करते हो? अरे वो तो सर्वव्यापक है, हैं? अपन भगवान को क्या बोलते, थारी इतनी दिया बत्ती करी, इतना दिया जलाया, तू मन दर्शन ही को नहीं दिया, बोलते ना भगवान को? और प्रसाद का भोग लगाते मैं कुट्टी मैं लगाऊ को नहीं भोग, भूखो मर, तो भूखा मरता है क्या? पहले तो विचार करो कि वो तो सारे जगत को पाल रहा है, तुम मक्तों का क्या खिला सकते तुम? ऐसे जीव की छोटी सोच होती है, छोटे विचार होते हैं, और ये जब तक गांठ नहीं खुलती है सत्संग के बिना तो आगे बढ़ता नहीं। नहीं तो ये ग्रंथि है ना, गांठ है ना जड़ चेतन की, कि मैं जन्मने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, उस जाति का हूँ, मैं उस कुल का हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, और गुरु ने कोई कड़क वचन कह दिया ना किसी को, क्यों रे ऐसे, तो सोचे सबके सामने मारो माजनो कर दिया, मैं तो को नहीं जाऊँ गुरु जी के सत्संग, मत जा। गुरु खाते क्या है? चुटिया की चक्की, दही बड़े, ये तुम्हारे टिफिन? अहंकार खाते हैं, जिस किसी में भी अहंकार आता है ना, ठीक है? तो ये वाली बात है, तो भगवान को सर्वव्यापक समझना चाहिए। तो भगवान और गुरु जो तत्व होता है वो भी व्यापक है। चलो किसी के गुरु अभी ये ऐसे हैं क्योंकि उनको व्यवहार में शरीर है तो यहाँ पे भी रहना पड़ता है, पर गुरु शक्ति तो सर्वव्यापक है। तुम करो छाने छाने, वो देखती ऊपर ऊपर के पाने, सब लिखती है वो किसने क्या किया, तो और वैसा ही फल देना मिलता। तो हे पांडव, इस समस्त जगत का मूल मैं ही हूँ, और मुंह से ही सबका जन्म स्थिति दोनों होते हैं, जल में तरंग में जल उत्पन्न होते हैं, तरंगे जल में उत्पन्न होती है और उनका आश्रय जल ही होता है। जैसे बिना जल के तरंगे हो ही नहीं सकती, वैसे इस विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती जो मेरे बिना हो और जिसमें मेरा निवास न हो। जिन लोगों को मेरे इस विश्व व्यापक स्वरूप का ज्ञान है कि भगवान सर्वव्यापक है, वह चाहे जिस स्थान पर रहकर भजन करे, पर वे वास्तव में उदित होने वाले प्रेम भाव से ही भजन करते हैं। ऐसे लोग देश काल और वर्तमान इत्यादि सब मुझ में अभिन्न मानते हैं। अब जैसे कोई बदली हो गई तो सोचे कि वह अपन तो आश्रम में है नहीं, मंदिर में है नहीं, गुरु से दूर हैं। नहीं, वो जहाँ देश चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, अफगानिस्तान हो, गुरु तो वहाँ पे भी है, भगवान तो वहाँ पे भी है नहीं। तो ऐसे और काल हर समय में रहता है, जागृत में, स्वप्न में, सूर्य में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, उसका अभाव होता ही नहीं भगवान का, गुरु इत्यादि सबको मुझ में अभिन्न मानते हैं। और जैसे वायु गगन रूप होकर गगन में विचरण करती है, वैसे ही वे मुझ जगत रूप को मन में रखकर अपने आत्मज्ञान से तीनों लोकों में सुखपूर्वक क्रीड़ा करते हैं। तुम ये बात निश्चित रूप से जान लो कि जीवन में जो कुछ भी दृष्टिगोचर हो उसी को भगवत रूप मानना ही मेरा सच्ची भक्ति योग है। जिन भक्तों का चित्त मद रूप हो गया है, मेरे अनुकूल मेरे रूप ही हो गया है, मेरे स्वरूप से जिनके अंतःकरण का सम्यक रूप से समाधान हो जाता है मन बुद्धि से भगवान का, कि सारा जगत में वो वही समाया है, और जिनके प्राण मेरे स्वरूपानुभव से तृप्त हो गए हैं, और जो आत्मबोध के प्रेम में पढ़कर जीवन और मृत्यु सब कुछ भुला बैठे हैं, वे लोग उसी आत्मबोध के बढ़ते हुए प्रभाव से अद्वैतानंद के आनंद में सुख में नृत्य करते हैं कि मेरा सत्य चित्त आनंद रूप सब जीवन में वही समाया, उसके बिना कोई दूजा है नहीं, तो फिर किस बात का दुख। तो वे लोग आत्मबोध के बढ़ते हुए प्रभाव से अद्वैतानंद के सुख में नृत्य करने लगते हैं और परस्पर केवल आत्मबोध का ही लेन देन करते हैं। संसार की दूसरी रिश्तेदारी तो छूट जाती है, गुरु भाई सगे भाई से भी बढ़ के हो जाते हैं। जैसे एक दूसरे के निकट स्थित सरोवर बढ़ाने पर परस्पर मिल जाते हैं और उनकी तरंगों का निवास आपस की तरंगों में ही होता है, वैसे ही अभेद भक्ति वाले भक्त जिस समय एक दूसरे से मिलते हैं और उनमें एक के भाव की स्थापना हो जाती है, उस समय मानो आनंद के आगार आपस में पिरोए जाते हैं और आत्मबोध को आत्मबोध के द्वारा ही आत्मबोध का ही अलंकार प्राप्त होता है और इस प्रकार उस आत्मबोध की शोभा की वृद्धि होती है। जैसे एक सूर्य दूसरे सूर्य की आरती करे, अथवा एक चंद्रमा दूसरे चंद्रमा का आलिंगन करे, अथवा दो समान जल प्रवाह परस्पर मिल जाएं, ठीक वैसे ही जिस समय भक्ति योग से युक्त भक्त एक दूसरे के साथ मिलते हैं उस समय उनकी समरसता का पावन प्रयाग तीर्थ बन जाता है और तब उन तीर्थ के जल में सात्विक भावों की बाढ़ सी आ जाती है और वे एक के चतुष पथ के गणेश बन जाते हैं। इसके बाद उस आत्मानंद के अत्यंत सुख से भरे हुए वे भक्त योगी देहाभिमान वाली सीमा पार करके मेरे लाभ से पूर्ण समाधान प्राप्त करके उच्च स्वर से घोष करने लगते हैं। गुरु एकांत में अपने शिष्य को जिन मंत्राक्षरों का उपदेश करता है उन्हीं मंत्राक्षरों का उद्घोष वे लोग सबके समक्ष मेघों की भांति गरज गरज कर करते हैं। कमल कलिका जब अपनी विकास की पूर्ण अवस्था को प्राप्त होती है, कमल की कली, तब अपने अंदर स्थित मधुरस किसी प्रकार दबाकर नहीं रख सकती और वह राजा से लेकर रंग पर्यंत सबका समान रूप से आतिथ्य करती है, सुगंध सबको बरोबर देती है कि राजा है ये, गरीब है इसको, सबको। इसी प्रकार वे भक्ति योगी अतिशय आनंद में भरकर पूरे संसार में मेरा घोष करते हैं, भगवान का उच्चारण करते हैं और उस कीर्तन के घोष से उत्पन्न होने वाले संतोष से इतने अधिक भर जाते हैं कि अंत में वे कीर्तन भूलकर स्तब्ध हो जाते शांत, और उसी विस्मृति में तन मन से रमण करते हैं। इस प्रेमा अतिरेक में उन्हें दिन और रात का भी ध्यान नहीं रहता कि समय कैसे बीत गया। इस प्रकार जो लोग मेरे स्वरूप का लाभ दोष रहित पूर्ण सुख पा जाते हैं।